मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 1 मार्च 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों एक सूचना मैं पहले से ही दे दूं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मैं भूल जाऊं। और वह सूचना यह है कि आपको मालूम है, जिसकी आप साल भर से प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि कल होली है, कल यानी कि शुक्रवार, परसों शनिवार है और उसके बाद रविवार है, यानी कि 3 दिनों तक अब मैं आप सबको मिस करूंगा, यानी कि आप सबसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए मैं आप सबकी अभी से ही पूर्व अनुमति ले लेता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि कल होली है, तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी आप प्रिय श्रोताओं को, अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से और आप सबको भी एक दूसरे की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना यह कि होली में जो रंग बिरंगे रंग होते हैं, अलग अलग तरीके की जो चीजें खिलती हैं, वे सब हम सबके जीवन में भी शामिल हो, हमारा जीवन खुशनुमा हो, उत्सव से भरपूर हो, साथ ही ऊर्जा और उत्साह से सरोबोर भी। तो दोस्तों आइए आज हम थोड़ा सा होली के बारे में ही कुछ बातें कर लेते हैं। फ्रेंड्स जब हम किसी त्योहार के बारे में सोचते हैं तो एक अलग ही परिदृश्य हमारे दिमाग में आता है। जैसे त्योहार है, त्योहार तो ठीक है, आप घरों में अलग अलग तरह के व्यंजन बन रहे हैं, हम खा रहे हैं, कहीं दीपक जलाए जा रहे हैं, किसी त्योहार में राखी बांधी जा रही है, कोई धार्मिक पर्व है, किसी में आपके ईद मनाई जा रही है तो सेवैयां खाई जा रही हैं। तो इस तरीके से हम सब अपने अपने ढंग से त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस समय इन त्योहारों की शुरुआत की गई थी, उस समय इन सब के पीछे हमारी जिंदगी की फिलॉसफी काम कर रही थी और हमारी तात्कालीन आवश्यकताएं काम कर रही थी। उस समय इस तरह के त्योहारों की जरूरत थी, चाहे वो प्राकृतिक जरूरत हो, चाहे वो शैक्षणिक जरूरत हो, कोई भी जरूरत हो, लेकिन वह थी। स्वास्थ्य की जरूरत हो सकती है। अब यह बात अलग है कि हम सदियों से ये सब त्योहार मनाते आ रहे हैं और आज हमारी जीवन प्रणाली बिल्कुल बदल गई है, हमारी आवश्यकताएं भी बिल्कुल परिवर्तित हो गई हैं और उसके अनुकूल त्योहारों के रंग रूप भी बदल गए हैं। अब कोई भी त्योहार मुझे लगता है कि उस जैसा नहीं रह गया जब इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय वह वैसा था। सारे त्योहार बिल्कुल बदल चुके हैं। दोस्तों अगर मैं सन 70-75 के आसपास की होली की बात करूं, अपने गांव की बात करूं और यहां तक कि चलिए अपने शहर की ही बात करूं सन 80 के आसपास की, तो आज जो गांव में होली मनाई जाती है और यहां तक कि उन्हीं छोटे शहरों में जो होलियां मनाई जा रही हैं, वो पहले से बिल्कुल भिन्न हो चुकी है, एकदम अलग हो चुकी है। मैं ये आलोचना के स्वर में नहीं कह रहा हूं, ये होना ही है, परिवर्तन तो आता ही आता है। आप पुरानी चीजों को कब तक उसी रूप में सहेज कर रख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है और यह परिवर्तन स्वागत योग्य है। दोस्तों जब होली के त्योहार की परिकल्पना की गई होगी तो मुझे लगता है कि जिसने भी इसके बारे में सोचा होगा या जिस ग्रुप ने सोचा होगा, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहा होगा या वो समूह उस समय के समाज की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो गई थी, शायद उसके इलाज के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि होली की परिकल्पना की गई। फ्रेंड्स नो डाउट कि इस होली के पीछे हमारी एक पौराणिक कथा भी है और वो आप जानते हैं। जो भी धार्मिक हमारे त्योहार हैं, उत्सव हैं, आप देखेंगे कि सबके पीछे कोई ना कोई एक कथा होती है और चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार क्यों ना हो, लेकिन उसका एक तात्कालिक बहुत जबरदस्त सामाजिक कारण होता है और तात्कालिक बहुत बड़ी जरूरत होती है। होली की जो मनोवैज्ञानिक जरूरत है मित्रों, वह बेसिकली हमारे अवचेतन मन की सफाई करने की जरूरत को व्यक्त करता है। जैसे मैं ये मानता हूं कि होली दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, दिवाली के दिन हम अपने घरों की सफाई करते हैं। पहले से ही आप देखिए कि चूना पोतना, लिपाई पुताई, घर की सफाई शुरू हो जाती है और हम कुछ न भले करें लेकिन होली के समय तक अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा जरूर बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि दीपावली हमारे घरों की सफाई का त्योहार है और होली हमारे मन की सफाई का त्योहार है, मन की सफाई का त्योहार है। मित्रों, होली के स्वरूप को आप देखिए, होलिका दहन की जाती है और उसमें चोरी की हुई लकड़ियां जलाई जाती हैं। आप सोचिए कि चोरी की हुई लकड़ियां, और इसके बाद फिर बाद में जब होलिका दहन हो जाता है या उससे ठीक पहले लोग अपने अपने घरों से जाते हैं और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े या अपने घर का कचरा ले जाते हैं और उस होलिका में जब दहन होता है तो उसमें डाल देते हैं। कुछ जगह हो सकता है कि ये परंपरा न भी हो। तो अब आप देखिए कि वो घर का कचरा है वो जला रहे हैं। ये सिंबल है, ये प्रतीक है, सिंबॉलिक है। बेसिकली हम कचरे के माध्यम से क्या जला रहे हैं अगर हम कर पा रहे हैं तो, और वह है कि हम अपने मन की कुंठाओं को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें जलाकर उन्हें खत्म करके उनसे मुक्ति पा रहे हैं। अवचेतन मन में पता नहीं हमारी कितनी दमित इच्छाएं दोस्तों कूड़े कचरे की तरह जमा होती हैं, और इसे बकायदे हमारे गौतम बुद्ध ने भी स्वीकार किया है कि हम सबके मन के एक कोने में एक कचरा घर जैसा होता है। जैसे हमारे घर में भी होता है ना, एक स्टोर होता है छोटा सा जिसमें हम घर की बची खुची चीजें लगातार डालते चले जाते हैं, उसमें चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं। ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है, हमारे मन के भी एक कोने में इस तरह का एक छोटा सा कचरा घर बना रहता है जिसमें पता नहीं कितनी दमी तिक्षाएं जम जाती रहती हैं, मरती रहती हैं, दबती रहती हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होती, उन्हें खत्म करना पड़ता है। और ये होली का जो त्योहार है वो उसी तरीके से खत्म करने की एक प्रक्रिया है। आप देखिए पुराने समय की मैं बात कर रहा हूं कि गांव में होली के दिन क्या किया जाता था। सरेआम गालियां दी जा रही हैं, लोगों की आलोचनाएं की जा रही हैं, लोगों को टाइटल्स दिए जा रहे हैं, किसी के लिए कुछ भी बोला जा रहा है, और बोलने के साथ साथ ये याद दिला दिया जाता है कि बुरा न मानो होली है। भैया आप बात तो ऐसी ही कर रहे हैं जो किसी को भी बुरी लग सकती है, लेकिन आप कह देते हैं कि आज के लिए छूट है, बुरा मानने की बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो बुरा न मानो के तहत हम जो बुरी बुरी बातें कह रहे हैं वो हमारे मन के अंदर दबी हुई बातें हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। हम घर की अपनी सफाई कर रहे हैं। किस घर की? मन के घर की हम सफाई कर रहे हैं। मित्रों, एक नाम आपने सुना होगा फिलॉसफर का, डेफिनेटली अरस्तु। प्लेटो के शिष्य थे, ग्रीक दार्शनिक रहे हैं, यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक रहे अरस्तु। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, कैथारसिस का सिद्धांत, कैथारसिस। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसे होली से जोड़ सकते हैं, आप सोच करके देखिएगा। ग्रीक यूनान में, प्राचीन यूनान में थिएटर बहुत पॉपुलर थे, नाटक खूब खेले जाते थे। आप देखिए पुराने ग्रीक नाटक उठा करके आप पढ़िए तो आपको खूब मजा आएगा। उन नाटकों की विशेषता यह थी कि वो दुखांत होते थे। दुखांत का मतलब है कि उन नाटकों का जो अंत होता था ना वो बड़ा दुखद होता है था। जैसे भारत की कहानियां देखिए या भारत की फिल्में देखिए तो हमारा सुखांत होता है, आखिरी में सब ठीक ठाक हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। लेकिन ग्रीक में, यूनान में बिल्कुल उल्टा था, वहां सारी चीजें दुख में समाप्त होती है, दुखांत होता है। इस पर अरस्तु ने अपने कैथारसिस का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो नाट्यशालाएं हैं, जो थिएटर है जहां नाटक खेले जा रहे हैं, ये बेसिकली हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं। अब आप चौंकेंगे कि ये अस्पताल कैसे हैं। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल इस रूप में हैं कि जब दर्शक यहां नाटक देखने जाते हैं तो उनके मन में बहुत से विकार मौजूद रहते हैं, बहुत सी सोच, बहुत से दुख, दर्द, तकलीफें उनके मन में जमा होती हैं। जब वो नाटक देखते हैं, और नाटक दुखद है, तो जब वो दुखद नाटक देखते हैं तो उनके अंदर का दुख धीरे धीरे पिघलने लगता है, बाहर आने लगता है। लोग यहां तक कि नाटक देखते देखते रोने लगते हैं, सुबकने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूटने लगती है, और नाटक चलता रहता है। फिर नाटक खत्म हो जाता है, और जब नाटक खत्म हो जाता है तो ये जो दर्शक हैं वहां से बाहर आ जाते हैं, और जब वे नाट्यशाला से बाहर आते हैं तो बड़ा अपने आप को शांत महसूस करते हैं, बहुत ही खाली महसूस करते हैं, उन्हें एक सुकून का एहसास होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो नाट्यशालाएं हैं ये मूलतः सच मायने में हॉस्पिटल हैं, मतलब उनका इलाज हो गया, उनके अंदर के जितने भी विकार थे वो सब के सब विकार आंसुओं में बह गए, खत्म हो गए, बाहर निकल गए, तो अब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए हैं। इसी प्रक्रिया को दोस्तों अरस्तु ने कैथारसिस कहा था, कैथारसिस। तो मुझे ये लगता है कि जो होली का त्योहार है ये कुछ न कुछ उसी तरह के कैथारसिस सिस्टम में फिट बैठता है। ये भी एक तरह का कैथारसिस ही है। और आपको शायद जानकर आश्चर्य नहीं होगा इस बात को तो कम से कम कि जो होली का त्योहार है एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया की सभी संस्कृतियों में मिलता है, भले इस रूप में न मिले, बदले हुए रूप में ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, या किसी न किसी रूप में हर समाज में मौजूद है। देखिए सीधी सी बात है कि हर समाज में मनुष्य है, मनुष्य है, और अगर समाज है तो उसके कुछ मनोविकार हैं, और हर समाज चाहेगा कि वो अपने मनोविकारों से अपने लोगों को छुटकारा दिलाए, तो उसने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी अपनी प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से अपने अपने लिए होली की रचना कर ली। किसी ने उसे कार्निवाल बना लिया, तो किसी ने कुछ बना लिया, तो हमने उसे होली बना लिया। तो मित्रों, मुझे लगता है कि होली के त्योहार को हम कुछ इस तरीके से भी सेलिब्रेट करें कि किस तरीके से हम अपनी कुंठाओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बहुत से तरीके हैं, उसमें से एक सार्वजनिक तरीका होली का तरीका है। तो मित्रों, होली के बारे में बस इतनी ही बातें, और एक बार फिर से मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इजाजत चाहता हूं। सोमवार को फिर आप सबसे मुलाकात होगी और फिर हम सब ढेर सारी बातें करेंगे। मित्रों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।